आगे द्वैत शासन का प्रचलन। यह द्वैत शासन प्रणाली जो 1 अप्रैल 1921 को आरंभ की गई थी, 1 अप्रैल 1937 तक चलती रही। यद्यपि बंगाल में 1924 से 1927 तक और मध्य प्रांत में 1924 तक से 1926 तक यह कार्य नहीं कर सके। कार्यान्वित करते समय इसके प्रमुख दोष सामने आए। पहला दोष था प्रशासन का 2 स्वतंत्र भागों में बांटना राजनीति के सिद्धांतों तथा व्यवहार के विरुद्ध था। विषयों का आरक्षित था हस्तांतरित करना भी अव्यवहारिक था, क्योंकि मंत्री अथवा कार्यकारी परिषद एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए सिंचाई तो आरक्षित विषय था और कृषि हस्तांतरित, परंतु स्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे से अविभेद्य है। इसी प्रकार उद्योग को जो हस्तांतरित था, जल शक्ति कारखानों तथा खानों से जो आरक्षित विषय थे, कैसे पृथक किया जा सकता था। इस प्रकार के उदाहरणों की संख्या अधिक थी। दूसरा, दोनों शाखाओं के बीच उद्देश्य की एकता भी नहीं हो सकती थी। उदाहरण के रूप में जब सिख गुरुद्वारों का आंदोलन चल रहा था तो प्रस्त शांति और व्यवस्था था, परंतु धार्मिक संस्थान चूंकि हस्तांतरित विषय था और केवल संबंधित मंत्री महोदय इस विषय में पहल कर सकते थे, इसलिए शांति और व्यवस्था का कार्यकारी परिषद कुछ नहीं कर सकता था। तीसरा, कई बार तो यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सा विषय आरक्षित और कौन सा हस्तांतरित है। सिवाय चिंतामणि जो संयुक्त प्रांत के मंत्री थे ने एक घटना का उल्लेख किया। 1921 में भूदृत क्षेत्र उपखंडन के विषय में एक जांच आरंभ की गई। जांच कृषि विभाग हस्तांतरित ने की थी। एक वर्ष पश्चात जब जांच रिपोर्ट दी गई तो पता चला प्रश्न से तो भूमिकर विभाग आरक्षित को निपटना चाहिए था और यह प्रश्न उसे दे दिया गया। 2 वर्ष के परिश्रम के बाद पता चला यह तो सहकारी विभाग हस्तांतरित का था। चौथा, प्रायः प्रशासन के दोनों भाग आपस में विरोधी होते थे। मंत्री लोग जनता के प्रतिनिधि थे और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आते थे और कार्यकारी पार्षद नौकरशाह के लोग होते थे। कई बार यह मंत्री तथा कार्यकारी पार्षद सामूहिक रूप से एक दूसरे की आलोचना करते थे और गवर्नर सदैव कार्यकारी पार्षदों का समर्थन करता था। पांचवा, एक प्रकार से मंत्री की स्थिति बहुत गंभीर थी। उसे 2 स्वामियों को प्रसन्न करना होता था, गवर्नर को जो उसे नियुक्त करता था जिसकी इच्छा पर वह मंत्री बना रह सकता था और विधान परिषद को जो उसे अपना प्रतिनिधि समझती थी और जिसकी इच्छा से ही वह प्रायः मंत्री बना रह सकता था। तब प्रायः मंत्री लोग भी गवर्नर की इच्छा के अनुकूल ही कार्य करते थे, क्योंकि विधान परिषदों में कोई भी शक्तिशाली दल नहीं होता था। इसलिए मंत्री को अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शासक वर्ग की सहायता लेनी पड़ती थी और मंत्री लोग सरकार के ही पक्षपाती होते थे। उन्हें हम केवल गौरवयुक्त सजे भी कह सकते थे। छठा, गवर्नरों ने स्वयं ही संयुक्त दायित्व को पनपने नहीं दिया। उनमें दल निष्ठा कभी नहीं आ सकी। कई बार मंत्री लोग भी आपस में एक दूसरे की आलोचना करते रहते थे। 1928 में पंजाब के फिरेज खानून ने अपने हिंदू सहयोगी की स्पष्ट रूप से आलोचना की। सातवां, कई महत्वपूर्ण विषयों में तो मंत्री से मंत्रणा भी नहीं की जाती थी। गांधी जी की गिरफ्तारी 1930-31 में, असहयोग आंदोलन को दबाना इत्यादि अनेक ऐसी घटनाएं थी जिसमें मंत्री लोग भी दर्शकों की भांति मूक दर्शक बने बैठे रहे। आठवां, मंत्री लोगों का अपने विभाग पर भी पूर्ण नियंत्रण नहीं होता था। विभागीय सचिव जो नौकरशाही से होता था गवर्नर से साप्ताहिक बैठक करता था। प्रायः उसी का सुझाव मंत्री का नहीं गवर्नर को मान्य होता था। जब कभी भी मंत्री और अधिकारियों में विभेद होता था मामला गवर्नर के पास जाता था और वह सदैव अधिकारी वर्ग का समर्थन करता। जैसा कि पी एन मसालदान ने कहा है, मंत्री द्वारा निर्धारित नीति अनुसरण करने के लिए अधिकारियों को दे दी जाती थी और उन पर मंत्री का कोई प्रभाव नहीं होता था। यह तो मंत्री के लिए अधिकार रहित उत्तरदायित्व की बात थी। नवा, अखिल भारतीय सेवाओं का वेतन, निलंबन, पदच्युति अथवा हस्तांतरण भारत राज सचिव के हाथों में था। हस्तांतरित विषय में कार्य करते हुए भी सेवक उसी के अधीन थे, अतः वे मंत्रियों की रत्ती भी प्रवाह नहीं करते थे। मंत्री लोग अपनी इच्छानुसार पदाधिकारियों का अपने विभाग में स्थान रिक्त होने पर हस्तांतरण इत्यादि नहीं करा सकते थे। दसवां, बाह्य रूप से तथाकथित देश निर्माणकारी विभाग मंत्रियों को दे दिए गए थे, परंतु उनके लिए धन नहीं होता था। अतः मंत्रियों को 20 सदस्य के तलवे चाटने पड़ते थे और वित्त सदस्य आरक्षित विभागों की आवश्यकताओं की ओर प्रायः अधिक ध्यान देता था और जब चाहे हस्तांतरित विषयों के कार्य में रोड़ा अटका सकता था और हस्तांतरित विषयों का काम रोक सकता था। द्वैत शासन में त्रुटियों के अतिरिक्त और भी कई रुकावटें थी। पंजाब तथा अन्य स्थानों पर भीषण घटनाओं के कारण समस्त वातावरण ही दूषित हो गया था, जिसमें चारों ओर अविश्वास ही अविश्वास था। वर्षा के अभाव से सूखा पड़ गया था और दूसरी ओर मंडी में अत्यधिक मंदी आई। इससे प्रांत तथा केंद्रीय सरकारों की आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मेस्टर निर्णय के अनुसार प्रांतों को केंद्रीय कोष में धन देना होता था। केंद्र अपना पूरा भाग मांगता था और इस कारण वित्तीय संकट आ गया, जिससे प्रांतीय द्वैत शासन को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली।